दखल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना। पल पल को आबाद कर, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
ओम शांति। आदरणीय विद्या बहन जी हमारे सम्मुख हैं एक हाथ की ताली से। बहन जी का हम स्वागत करते हैं। आप कानपुर सब जोन का संचालन करते हैं। इसके पहले गंगे दादी के साथ 45 वर्षों तक आप उनके राइट हैंड बनकर सेवाएं देते रहे। गंगे दादी को कौन कौन जानते हैं? अच्छा, बहुत कम। गंगे दादी को बाबा हर हर गंगे कहता था, और कानपुर में गंगा नदी भी बहती है। दादी ने वहां रह करके, जब से बाबा ने सेवाओं में भेजा दादियों को बाहर, जब आबू में आए और उसके बाद दादियों को बाहर सेवा करने के लिए भेजा, तो दादी ने विशेष रूप से कानपुर में रह करके ही सेवाएं दी हैं। आपको 58 वर्ष हो गए समर्पित हुए, यानी साकार मामा बाबा के समय से ही आप ज्ञान में आए। जब बहुत छोटी आयु थी आपकी, तो कुछ अनुभव हमारे साथ आप बाबा के भी शेयर करेंगे। बहुत ही समर्पित बुद्धि, निश्चय बुद्धि, निर्माण सरल स्वभाव के हैं। बहुत ही सादगी भी आप में दिखाई देती है, जो हमने अनुभव किया है। हम सुनेंगे व्यर्थ से मुक्ति इस विषय पर। कई बार छोटी छोटी बातों में बहुत व्यर्थ संकल्पों में हम चले जाते हैं। नेगेटिव संकल्पों से तो हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प से मुक्त होना कई बार बहुत मुश्किल लगता है। और बाबा कहता है अब व्यर्थ से भी मुक्ति चाहिए, केवल नेगेटिव संकल्प विकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ से भी मुक्त होना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प चले मन में, तो उसकी विधि क्या है वो हम सुनेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हमारी मीठी दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति बोलते हैं, और भाई बहन भी बोलते हैं, लेकिन दुनिया वाले भी 3 बार बोलते हैं। अपना तो दादी जी ज्ञान के अर्थ से बोलते हैं, अर्थ स्वरूप में टिकने के लिए, और दुनिया वाले अपने भौतिक रूप से बोलते हैं। उनसे जब पूछा आप 3 बार ओम शांति क्यों कहते हैं, तो कहा कि 3 प्रकार का सुख चाहिए और 3 प्रकार की शांति चाहिए। तो वो कैसे? कहा दैहिक, दैविक और भौतिक। मना देह को भी सुख मिले, शांति मिले, और भौतिक जो सुख साधन है, तो भौतिकता में भी भौतिकता हो और शांति संपन्न हो, सुख संपन्न हो। और दैविक वो कहते हैं प्रकृति को, 5 तत्व को। तो 5 तत्व भी हमको सुख और शांति दे। तो 3 प्रकार की सुख शांति से हमारा जीवन सुखी रहेगा। तो दैहिक, दैविक और भौतिक। आत्मिक का तो उनके पास ज्ञान भी नहीं है। तो आत्मा का तो शिव बाबा ने दिया, जो ज्ञान के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर हम सर्व आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। और जब बाबा इस धरा पर आते हैं तो हम आत्माओं को सबसे पहले अपनी पहचान देते हैं और खुद की भी पहचान देते हैं। तो खुद की पहचान और खुदा की पहचान, और उसी पहचान में ही बाप दादा हम बच्चों को लक्ष्य देते हैं। सिर्फ 6 बातों में सारा परिचय बता देते हैं, आपका स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वधर्म क्या है, आत्मा का स्वलक्षण क्या है, आत्मा का स्वलक्ष्य क्या है और स्वकर्म क्या है और स्वदेश क्या है। तो जब ये 6 बातों की हमें जानकारी मिलती है तो जो दुनिया के अंदर आज आप देखेंगे तो छोटा हो या बड़ा सब अशांत है। और मूल कारण क्या है अशांति का, जैसा कि बताया बहन जी ने, वो व्यर्थ में रहते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, व्यवहार व्यापार भी करते हैं, लेकिन वो व्यर्थ के उलझनों में उलझे रहते हैं। और कहते भी सुना गया कि आप व्यर्थ में क्यों जाते हैं, व्यर्थ की बातों में क्यों पड़ते हैं। तो हम सुनते भी हैं, और जब बाबा ने हमें अपना बना लिया तो निगेटिव से तो मुक्ति दिला दिया, तो हम लोग समझते हैं शायद हम मुक्त हो गए। जैसे 5 विकार मोटे मोटे हैं, उससे तो मुक्ति पा ली, लेकिन एक 6ठा विकार जो आलस है, भले बाबा कहते हैं बच्चे सारे विकारों का जो मुख है वो है अहंकार, अभिमान जो जड़ है, लेकिन इन 5 से मुक्ति पाने के बाद भी अगर 6ठा विकार आलस है तो हमें वो पुरुषार्थहीन बना देता है। जो हमारी उन्नति होनी चाहिए, जो हमें अनुभूति होनी चाहिए और जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, कारण आलस। तो हम क्या शब्द बोलते हैं कि हाँ देख लेंगे, कर लेंगे, सोचेंगे, जिसको बाबा कहते हैं कि छोटे बच्चे की तरह गेंगे करते हैं। तो सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, तो जो गेंगे लगाते हैं ये आलस की निशानी है, वो हमें पुरुषार्थहीन बना देती है। तो अगर एक एक बात को हम अपने जो पहला दिन हमें पाठ मिला आत्मा के परिचय में, उस बात को एक एक बात यदि हम लेके सोचें तो हमारे अंदर व्यर्थ नहीं होगा, हम अपने स्वरूप से भटक जाते हैं, क्योंकि वो तो हम समझ लिया कि हम आत्मा हैं, ज्योति बिंदु हैं और ज्योति स्वरूप हैं। ये तो हमने बुद्धि में ज्ञान रखा परंतु दिल में नहीं समाया, उसका स्वरूप का अनुभव नहीं किया। अगर स्वरूप का अनुभव कर ले तो व्यर्थ भी हमारे से बहुत दूर चला जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। और बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमको व्यर्थ से उलझा के रखती हैं। और हम भी उसी में चक्कर लगाते रहते हैं। तो छोटी छोटी बातों से कैसे हम मुक्त हों? तो हमारा श्वास समय संकल्प शक्ति और जो स्थूल धन कुछ भी व्यर्थ ना जाए, सफल करें और सफलता को प्राप्त हो। अब ये व्यर्थ आता कहां से है? तो सबसे पहले जो हम अपने स्वरूप को भूलते हैं, जो स्मृति में हो कि मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, मेरा स्वधर्म शांति है, तो उस स्वरूप को भूलने के कारण हमारे संकल्पों में व्यर्थ आना शुरू होता है। जब हम सोचते हैं तो जरूर है कि उन्हीं संकल्पों से देखते भी हैं, जिसको कहते हैं कि सोच के बाद हमारी जो दृष्टि और भावनाएं हैं वो वैसे ही होती हैं। तो दोनों का संबंध है, दृष्टि का और हमारे सोचने का। सोचने से हमारी दृष्टि बनती और दृष्टि से ही हम सोचते भी हैं, हमारा सोच चलने लगता है। तो अब हम अपने को भूल करके दूसरे का ख्याल करते हैं, तो मन में क्या सोचते हैं, इनको ऐसा नहीं बैठना था, इनको ऐसा नहीं बोलना था, इनको ऐसा नहीं करना था। तो अपने प्रति ध्यान नहीं गया, लेकिन अब हम व्यर्थ में पहुंच गए कि जिसको देखा और देखने के पश्चात हमारे मन में विचार चल रहा, लेकिन ये नहीं सोचा है कि ये मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं सोचना है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। दूसरों के लिए सोचा कि इनको नहीं देखना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हम सोच रहे हैं क्या राइट है? तो मुझे भी अपने प्रति किसी के लिए नहीं सोचना है, क्योंकि इसमें हमारी उन्नति नहीं है। हम कभी चढ़ती कला, उन्नति कला का, उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जिसको बाबा ने दूसरे शब्दों में बताया है, ये पर चिंतन है, और पर चिंतन पतन की जड़ है, और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अब हम अपना स्वचिंतन नहीं कर रहे हैं, पर चिंतन कर रहे हैं। तो ये पर चिंतन एक व्यर्थ की लिस्ट में आएगा, इसलिए बाबा ने हमको बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, समझ दी है कि हम अपना ही चिंतन करें, अपने स्वरूप का, अपने स्वधर्म का। फिर कभी कभी कोई बातें सुनने को मिलती हैं, हमारा कोई बहुत अच्छा है जिसपे हम विश्वास करते हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकते, पूरा फेथ है, क्योंकि बाबा ने भी कहा है, बच्चे जितना शिव बाबा पे विश्वास उतना बाप दादा के दैवी परिवार पे विश्वास, उतना ड्रामा पे विश्वास जिसको निश्चय कहें, और उतना फिर अपने पे भी विश्वास। तो निश्चय हमारी विजय की ओर ले जाती है, और संशय तो संशय बुद्धि सुनाई है। तो हमें सब पर निश्चय करना है, केवल शिव बाबा में निश्चय है नहीं, दैवी परिवार में भी, क्योंकि ये परिवार बनाया किसने? पहले तो था नहीं, ईश्वरी परिवार का नाम भी नहीं सुना था, संगम युगी दैवी परिवार का नाम भी नहीं सुना था, तो ये परिवार भी बाबा ने बनाया। और जिस पे हमें पूरा निश्चय, उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो बहुत हमारे निकट में होंगे, उन पे और भरोसा है। लेकिन किसी ने आकर के जरा सा मेरे कान में एक शब्द बता दिया कि आप जिन पे इतना भरोसा करते हैं वह आपके लिए ऐसा बोलते हैं, और ये अनुभव में आया होगा जीवन में। अब एक शब्द सुनने के बाद हमारी चिंतन की धारा बदल गई कि जिसको हम इतना मानते हैं आज वह भी हमारे लिए ऐसा सोच रहे हैं। अब इसको हम व्यर्थ में कहेंगे, उन्होंने कहा या नहीं कहा, और कहा तो किस भाव से कहा, लेकिन जब निश्चय है तो पक्का निश्चय, और कहा तो अपने जो उनकी दृष्टिकोण है उस आधार पे कहा। जब बाबा कहते बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, तो दूसरे के कहने से हमारे अंदर उथल पुथल क्यों हो गई, इसको हम व्यर्थ का सोचना कहेंगे। तो मेरे कान ने भी व्यर्थ की बातों में सहयोग दिया, मन तो साथ था, बुद्धि में चिंतन चला, लेकिन एक एक इंद्रिय व्यर्थ में जा रही है। परंतु हमको लक्ष्य क्या मिला हुआ है? लक्ष्य मिला है कि बच्चे तुम स्टूडेंट हो, ईश्वरी विद्यार्थी हो, तो तुम्हारा लक्ष्य ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। विद्यार्थी कभी भी ऐसी ऐसी बातों में नहीं जाते हैं, अगर जाएंगे तो वो अपने पढ़ाई को पूरा नहीं धारण कर पाएंगे, जो आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, हमारा लक्ष्य है पढ़ाई की ओर, ना कि किसी की अन्य बातों पे ध्यान दे। और दो मुख्य विशेषता पढ़ाई वाला, एक तो रेगुलर होगा, दूसरा पंचुअल होगा, कभी व्यर्थ की बातों में नहीं जाएगा, सोचना तो दूर की बात है। तो हम सोचते हैं जो बाबा की शक्ति का अनुभव होना चाहिए और पढ़ाई में मन लगा के पढ़ना चाहिए, अब वो पढ़ाई तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए ना तो बाबा फिर याद रहता है और ना ही वो पढ़ाई की जीवन में धारणाएं हो पाती हैं। तो इसलिए हम स्टूडेंट हैं, जब हमें ये याद रहेगा तो निश्चित है कि हम अपनी पढ़ाई में व्यस्त और मस्त रहेंगे। तो हमारे कान, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे नेत्र ना व्यर्थ देखेंगे और ना ही व्यर्थ सुनेंगे और ना सोचेंगे, जिसको दूसरे शब्दों में कहें बुरा। बापूजी ने तीन बंदर बनाए और बाप दादा ने दो और जोड़ा कि बुरा सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो सोचने से हमारे अंदर व्यर्थ की बातें अपनी जड़ें जमाती जाती हैं। मान लीजिए हम किसी के घर गए या आपके घर आए, और आपने हमारी बहुत अच्छी खातिरी की, बहुत अच्छा आवभगत किया। लेकिन आप जब मेरे पास आए तो मैंने उतना नहीं किया, वो सम्मान नहीं दिया जो आपने हमको दिया था। अब आपके मन में क्या चलने लगा, क्या चलेगा? व्यर्थ कि समर्थ? व्यर्थ चलेगा। आप जब घर पहुंचेंगे तो बेशक पैर से चल रहे, पहुंच करके आपको काम भी करना है, काम भी कर रहे हैं। अपनी कर्म इंद्रियों को तो आपने काम बता दिया, अगर हाथ से काम करना है तो हाथ अपना काम कर रहा है, सब्जी काटनी है, भोजन बनाना है, जो घर का रख रखाव करना है, कुछ भी करना है, कोई आया उसको पानी भी देना है, हाथ अपना काम कर रहा। लेकिन मेरी बुद्धि में चिंतन वही चल रहा है कि देखो हम गए और हमारे साथ वो नहीं किया जो मैंने उनके साथ किया था, ना हमें वो सम्मान मिला और ना हमें इसने मिला, तो हमने क्या किया, क्या किया? कर्म इंद्रियों को काम तो बता दिया लेकिन अपने मन और बुद्धि को सोचने में बिजी कर दिया। उस समय अब ये नहीं सोच रहे कि मैं आत्मा कर्म इंद्रियों का मालिक हूं, तो अगर मेरा मन काबू में नहीं होगा तो इंद्रियां कितना काबू में होंगी। इसलिए कभी भी जो बाबा ने हमको शिक्षाएं दी है और लक्ष्य दिया है, बच्चे तुम्हें क्या बनना है, इस पढ़ाई से क्या बनना है, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, अब हम लक्ष्य विहीन होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बाबा ने लक्ष्य दिया है कि हमको देवता बनना है, तो देवताओं के एक एक अंग की महिमा क्या है, चरण को भी क्या कहा, कमल, और हस्त को कमल, और मुख को कमल मुख कहा, और नयन को, अब वो कमल समान कहाँ है? तो हम कमल समान बना रहे हैं या मुझे बनना है, बन रहे हैं, तो जब हम अन्य का चिंतन करते हैं तो क्या होता है, कमल समान नहीं रह गए, रहे कमल समान। तो हमें ये चेकिंग करनी है, चलते फिरते उठते बैठते जैसे बाबा कहते निरंतर अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, तो ये भी निश्चय करें कि हमारा लक्ष्य देवता बनना है, तो क्या हमारे एक एक ऑर्गन्स कमल समान बन रहे हैं? हम कमल फूल समान न्यारे हैं और प्यारे हैं, तो जितना न्यारे बनते जाएंगे उतना बाप के, दैवी परिवार के और सबके प्यारे बनते जाएंगे। तो अब हमें अपने ऊपर जब अटेंशन देंगे, जिसको स्व अध्याय कहें, स्वचिंतन कहें, तो पर चिंतन से मुक्त होते जाएंगे। उन्होंने क्या किया क्या नहीं मेरे साथ किया, अभी जैसे हम गीत में सुन रहे थे जैसी करनी, वो तो उन्होंने किया, हमने थोड़ी ना किया, हम अच्छा करें, क्योंकि हम जो करेंगे वो हमारे संस्कार बनेंगे, हमें देवताई संस्कार धारण करना है। तो जब हम अपने स्वर लक्ष्य को सामने रखेंगे तो लक्षण भी कौन से आएंगे? लक्षण भी वही आएंगे। और हमें जितना ऊंचा उठना है, जितना आगे बढ़ना है, उतना पीछे हमें मुड़ के देखना है। आप दुनिया में भी देखिए कि अगर कोई भगवान का भक्त बनना चाहता है तो जितने पीछे भाग ठोकर के गए उनको ही मुड़ के देखना होगा कि कैसे जिसको बाबा कहते नौधा भक्ति करने वाले भी निकले, भगवान पे अपना गला चढ़ाने वाले भी निकले। तो अच्छे से अच्छे भक्तों को जो भक्त माला में आते, ऐसा भक्त बनना है तो बहुत पीछे मुड़के देखना है। और यदि देश का भक्त बनना है तो जिन्होंने देश के प्रति कुर्बानी की तो पीछे ही मुड़के देखना है। और यदि हमें देवता बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, श्री राधे श्री कृष्ण बनना है और सतयुग के आज में जाना पड़ेगा। जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी उतना ही गहरी नींव डालनी होगी। तो इसलिए हमारी केवल पढ़ाई नहीं है लेकिन हमारी चढ़ाई भी है। हमें बहुत ऊंचा जाना है। और बाबा ने कहा बच्चे चढ़ती कला और तेरे भाणे सबका भला। तो जब हम ये देखेंगे कि हमारा भला कितना हो रहा है और हम चढ़ती कला में कितना जा रहे हैं, रोज अपना चार्ट देखेंगे हम कहीं ठहरती कला में तो नहीं है। दूसरी की बातें देख करके सुन करके इतना प्रभावित हो गए कि वही चिंतन करेंगे तो हमारी चढ़ती कला के बजाय ठहरती कला होगी। तो जब हमारी चढ़ती कला नहीं होगी तो दूसरों का भला कैसे होगा? तो जब हम ये स्मृति में रखेंगे कि हमको तो चढ़ना है और आगे बढ़ना है तो कभी भी पीछे बीती हुई बातें बुद्धि में नहीं आएंगी और ना ही उन बातों के चिंतन से हम कभी भयभीत होंगे कि ऐसा है वैसा है हमारे साथ क्या किया है। नहीं, तो हम निर्भय भी रहेंगे क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है। हम सत्य की राह पर सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे बाप की हम संतान हैं तो हमें कभी भी कोई कैसा भी हो हर एक आत्मा अपना पार्ट बजा रहा है। वो अपना बजा रहा है, हम अपना बजा रहे हैं। हमें लक्ष्य रखना है कि हमारी कभी भी कोई हुडिंग की ताली न बजाए, हमारे लिए वंश मोर की तालियां बजाए। हमारी पढ़ाई भी है, हमारी चढ़ाई भी है। एक पर्वतारोही चढ़ते समय दाएं बाएं नहीं देखता है, आगे पीछे नहीं देखता है, अपनी मंजिल को देखता है। तो हम चढ़ रहे हैं, चढ़ती कला हमारी है तो हम हमेशा व्यर्थ से बचे रहेंगे और हम समर्थ बनते जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें माया जीत बनना है, प्रकृति जीत बनना है, इंद्रिय जीत बनना है। तो अगर हम इन बातों में जाएंगे और उसका चिंतन करेंगे तो क्या होगा? तो ना तो मन जीत बने, ना माया जीत बने, ना इंद्रिय जीत बने और ना प्रकृति जीत बने। क्योंकि जो बातें सुना या देखा जो एक हमारे से विपरीत दिशा में है, उसका हमारे ऊपर इफेक्ट आ गया, तभी तो व्यर्थ के सोच चलते हैं। और इफेक्ट आना माना हमारे अंदर कोई डिफेक्ट है तो हम वो कैसे निकाल पाएंगे? और युद्ध हमारी है क्या अपनी कमियों को निकालने की, हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं उसको निकालने की? तो वो कमी वो कमजोरी हम निकाल नहीं पाएंगे, हमें वो निकालना है, उससे हमारी युद्ध चल रही है। और समय अपनी सूचना दे रहा है, वक्त कम है और मंजिल लंबी है। अब कैसे हम विजयी बनके दूसरों को विजयी बनाएं? तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम एक रूहानी योद्धा है, ये स्मृति में रखना है। जब वार चल रही होती है, दुश्मन सामने होता है, तो योद्धा कभी भी क्या सोचेगा मन में, निशाना लगाना सोचेगा या इधर उधर देखेगा? तब तक तो वो हार खा लेगा। तो हम योद्धा हैं, और हमारी विजय किससे होगी? हमारे पास क्या है? तोप के गोले नहीं है। बाबा ने हमको बहुत सूक्ष्म और तीन प्रकार के साधन दिए हैं। बाबा ने ज्ञान की तलवार दी है, ज्ञान से रॉन्ग क्या है राइट क्या है, हमें ये सोचना नहीं सोचना, ये बोलना ये नहीं बोलना, ये करना ये नहीं करना, क्या सही क्या गलत है। तो ज्ञान के आधार पर हम निर्णय करते हैं, और ज्ञान में सबसे बड़ी शक्ति है नॉलेज इज माइट। तो निर्णय करने की भी शक्ति है, परखने की भी शक्ति है। अब हम कैसे निर्णय कर लें? तो बाबा ने इसलिए ज्ञान की तलवार दी है, जो रॉन्ग है उसको काटते चलो और जो राइट है उसको अपनाते चलो। तो योद्धा को एक तलवार जरूरी है। पहले के राजाएं जब लड़ाई करते थे तो उनके पास तीन चीजें होती थी, एक तलवार, दूसरा उनका एक कवच लोहे का जिसको हम क्या कहें, बुलेट प्रूफ सदरी जॉकेट, और तीसरा उनके हाथ में ढाल होता था। तो तलवार से हम बुराइयों को काटते चलें, और साथ साथ बाबा की याद का कवच पड़ा हो। गोली कई प्रकार की होगी, केवल काम क्रोध लोमो अहंकार की गोली नहीं होगी, लेकिन ईर्ष्या की भी गोली होगी, नफरत की भी होगी, जिससे आज हमारा प्यार है उनके बारे में किसी ने कुछ कहा तो सोच के मन में दूरियां भी बन जाएगी, और मन में इतना बिठा लिया कि हमारा उसी भावना से कोई बात उन्होंने बोल दिया हंसी में, कहेंगे सही बात है, उन्होंने जो कहा ठीक ही कहा था। तो वो जो वाइब्रेशन है उसी आधार पे हम उनको देख रहे हैं, जो मेरे दिल में बैठ गया है। तो कोई बात हमारे ऊपर वार ना करे, हम एकदम सेफ रहें, तो बाबा की याद का कवच पहन के रखें। हम रूहानी योद्धा हैं, कवच जरूर पहनना है। हम योगी नहीं लेकिन निरंतर योगी बनना है, योग लगाने वाले नहीं। अगर निरंतर योग नहीं लगाएंगे तो अंतर पड़ जाएगा, और अंतर पड़ेगा तो धोखा भी खा लेंगे, माया का वार भी हो जाएगा। जैसे आप सबको याद होगा अपनी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो क्या कहा कि बस थोड़ी दूर तो चलना है और ये सदरी पहनने की क्या जरूरत है। लेकिन उसी 5 मिनट के अंतर में क्या हुआ सबको मालूम है। इसी तरह अगर हमने योग का कवच नहीं धारण किया, थोड़े से आलस में आ गए कि फिर पहन लेंगे, अलबेले हो गए कि चलो फिर बाबा को याद कर लेंगे, उतनी देरी मन का चिंतन दूसरी ओर चला गया जिसको हम कहें व्यर्थ में गया, तो क्या होगा, माया की गोली तो लग जाएगी। फिर उस जख्म को भरने में टाइम चाहिए, और गोली ना लगे, दूसरे की तलवार असर ना करे, तो बाबा ने हम बच्चों को ड्रामा की ढाल दी है। क्यों और क्या टेढ़े रास्ते नहीं जाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना, ये क्यों हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, तो क्यों क्या कैसे का जो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो बाप दादा कहते बच्चे टेढ़े रास्ते नहीं अपनाओ, क्यों क्यों करते, क्यों लग जाती है, तो हम व्यर्थ में क्यों में लगे हैं, नहीं जो हुआ फिनिश ड्रामा, तो फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप लगाना आसान है, वो तो छोटा बच्चा भी लगाएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क वो टेढ़ा है। तो जहां क्वेश्चन उठे समझ लेना हम व्यर्थ में जा रहे हैं। तो हमें हर चीज को बचाना है, और जब व्यर्थ में नहीं जाएंगे तो उसकी जगह सफल होता जाएगा, हमारा समय भी सफल होगा, हमारा श्वास भी सफल होगा, संकल्प भी सफल होगा, और तन तो सफल होगा ही, क्योंकि हमारे सोच का असर तन के ऊपर भी आता है, ऐसा कि नहीं नहीं आता है। तो जो हम सोचते हैं वो देखते हैं, वही बोलते हैं, वही करते हैं। इसलिए बाप दादा ने बहुत श्रेष्ठ सोच दिया है, और बाबा ने कहा बच्चे आप ब्राह्मण बच्चों का लक्ष्य संगम युग पे फरिश्ता बनने का है। तो फरिश्ता माना ही क्या, अपना कार्य किया, उपराम हुए, बाबा ने हल्का रखा है, तो ज्ञान और योग, उमंग उत्साह का जो पंख दिया है वो हमारा कभी ढीला नहीं होगा, माया रूपी जटायु कभी काट नहीं सकता। लेकिन अगर हम किसी व्यर्थ की बातों में जाएंगे तो माया हमारी पर को काट सकती है, उमंग उत्साह खत्म हो सकता है। फिर हम अपने कार्य को, बातों को टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उड़ नहीं सकते हैं। तो साकार में भी बाबा हमेशा कहते थे, साकार ब्रह्मा बाबा, बच्चे दो काम कभी नहीं करना। जो मुझे व्यक्तिगत में बाबा ने कहा, एक चालू काम नहीं करना और एक टालू काम नहीं करना, मना टालना नहीं कल के ऊपर, कल का दिन काल का दिन है। तो मुझे अच्छे से याद है, इसी सामने वाले मैदान में, लान में, हॉल के बाहर, बाबा के रूम के पीछे, तो एक दिन रात को 10 बजा था, तभी वो शशि बहन जी जहाँ बैठते ना, वो ऑफिस नहीं बना था, तो चारपाई पर हम दो तीन बहने कुमारियां बैठी थी, छोटे थे तब, और उसी समय मेवाड़ की चारपाई होती थी, पट्टे होते थे बड़े बड़े, वो ढीला था, तो बाबा ने कहा बच्ची ये खटिया ढीली है। तो मैंने क्या बोला, बाबा कल कस लेंगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, कल का दिन काल का दिन है, कभी भी टालू काम नहीं करना, इसको हुआ टालना, और जिसको टाल देंगे वो हमेशा के लिए टल जाएगा। इसलिए हर कार्य को अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जब ये हम अपने मन में लाते हैं जो बाबा ने शिक्षाएं दी है, और उसी समय बाबा ने चारपाई को ठीक करके दिखाया, करके दिखाया, तब से लेकर के एक संकल्प बाबा का आया कि कल के लिए नहीं करना है, तो ना तो टालना है और ना उस काम को चालू खाते की तरह काम करना है, काम चलाने वाला नहीं। तो इन सब बातों को जो बाबा ने हमको शिक्षाएं दी है, यदि उसको हम प्रैक्टिकल में लाते हैं तो कभी भी हमारे से व्यर्थ नहीं होगा, हम व्यर्थ को अवॉइड करते रहेंगे, अवॉइड करते रहेंगे, और नहीं तो समर्थ अवॉइड हो जाता है। और बाबा कहते बच्चे जो व्यर्थ को अवॉइड करता है वो अवार्ड पाता है, किससे, बाप दादा की तरफ से अवार्ड मिलता है। तो हमें व्यर्थ को अवॉइड करना है, केवल समय श्वास संकल्प के साथ स्थूल चीजों को भी हमें बहुत सफल करना है, उसको भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक बार की बात हम आपको बताते हैं कि हमारी दादियां कैसे चीजों को सफल करती थी। तो मैं अमृतसर में थी और वहां जवाहर दादी थी, तो पालक आई हुई थी, तो बड़ी बड़ी पत्ती हमने तोड़ दी, बीच में छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, वो छोड़ दिया और डंडी छोड़ दी। तो दादी जी ने देखा, कहा देखो तुमने ये इतनी पालक तोड़ के दिखाया, एक व्यक्ति का साग बन सकता है, और इसको आपने क्या किया, वेस्टेज किया, व्यर्थ कर दिया। तो इतनी इतनी चीज को भी व्यर्थ नहीं होने दिया। तो जब इतना साग व्यर्थ नहीं जाने दिया और ये सिखाया, तो आप समझ लीजिए कि श्वास समय धन ये तो बहुत बड़ी शक्ति और संपत्ति है, जिसके आधार पर हम इतने महान बनते हैं। सफल करो और सफलता को पाओ। हम गंगे दादी के साथ 43 इयर्स रहे, कोई चीज को व्यर्थ नहीं जाने देते थे। जो हम लोग भोजन बनाते थे और भोजन थाली में खाते थे, उसको भी साफ करने के टाइम सारे बर्तन को पानी से धुलवाती थी और छन्नी में पानी को छानते थे, जूठे पानी को, तो क्या निकलता था, इतना अन्न के कण निकलते थे। कहते थे देखो ये बाबा के घर का अन्न है, बाबा के भंडारे का है, आप कहेंगे वो जूठन को क्या करेंगे। एक पत्ते पर रखवाती थी और पत्ते पर रख करके कहते जाओ पेड़ की जड़ पे रख आओ नीचे, तो गिलहरी खा लेगी, चींटियां खा लेंगी, चिड़ियाएं खा लेंगी। दादी जी कहते थे भूख हाथी का और चींटी का और व्यक्ति का एक समान है। तो ये जो अन्न के कण यज्ञ के हैं कि जिन्होंने दिया, बाबा को भोग लगा और यज्ञ से ये बाहर नाली में चला जाए, तो इतना सफल करना है। तो दादियों ने छोटी छोटी चीजों पे ध्यान खिंचवाया, मम्मा बाबा ने ध्यान खिंचवाया, कभी व्यर्थ ना जाए, कोई चीज ना जाए। मैं जा रही थी तब इतने साधन नहीं थे, कपड़े धुले टंगे हुए थे और उन कपड़ों से नीचे गिरे हुए थे। हम निकल गए, बाबा ने कहा बच्ची इधर आओ। जी बाबा। बच्ची ये कपड़े गिरे और तुमने अनदेखा कर दिया, उठाया नहीं, छोटे थे तो क्या निकलेगा। बाबा मेरा नहीं है। बाबा एकदम ऑफिशियल। बच्ची क्या बोला, ये मेरा तेरा क्या होता है। बाबा ने कहा बच्ची ना मेरा है ना तेरा है, ये यज्ञ का है। जिसको ये वस्त्र मिला वो यज्ञ से मिला, अगर ये फट गया तो यज्ञ को देना पड़ेगा, अगर ये मैला हो गया, मिट्टी में लिथड़ गया तो दोबारा धोना पड़ेगा, दोबारा धुलाई करने के लिए साबुन चाहिए, वो किसका खर्च होगा, यज्ञ का। फिर इसके लिए पानी चाहिए, आपको पता वो भी दिन थे कि जो पीछे बरगद का पेड़ है जहां बाबा विदाई देने जाते थे वहां से बाल्टी भर के मैं बहुत बार लाई बाबा के स्नान के लिए, पानी वहां से आता था। तो पानी आएगा तो पानी भी खर्च होगा, साबुन भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा। तो ये बचाना है यज्ञ का या नहीं बचाना है। तो बाबा जिसके तन में भगवान ब्रह्मा बाबा इतना समय देके मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि तेरा मेरा नहीं, यज्ञ है। यज्ञ की भी हर चीज की संभाल करनी है, व्यर्थ कुछ भी जाने ना पाए। तो समय भी व्यर्थ ना जाए, धन भी व्यर्थ ना जाए, कुछ भी ना जाए। तो ना वस्तु व्यर्थ में जाए, ना वैभव व्यर्थ जाए और ना समय अपना संकल्प व्यर्थ जाए। ये बाबा मम्मा और दादियों ने सिखाया। तो जब व्यर्थ नहीं करेंगे तो समर्थ होगा। और सर्वशक्तिवान बाप हम बच्चों को समर्थ बनाने आए हैं। तो एक एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान खिंचवाते थे, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही हमारे दिमाग को भारी कर देती हैं और वो एक दिन इकट्ठा हो जाती हैं, फिर वो हमारे संस्कार में आ जाता है। जैसे एक कच्चा धागा है, आप उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन अनेक धागे इकट्ठा हो गए वो रस्सी बन जाएगा, तो वो तोड़ना मुश्किल होगा। तो अगर हमने व्यर्थ संकल्पों को स्थान दे दिया, आज एक बात की फीलिंग आई, उसका सोच चलता रहा रात दिन, बाबा को कब याद करेंगे, अपने विकर्मों को कब विनाश करेंगे, अपनी आत्मा में शक्ति कब भरेंगे। इसी तरह अगर कोई बात हमें गुस्सा तो नहीं आया लेकिन अंदर में उत्तेजना तो आई गई बात सुन करके, वो जो अंदर में जलन है, छोटी सी चिंगारी है, वो चिंगारी धीरे 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 क्या होगी। आज एक बात, कल दूसरी बात, परसों तीसरी बात, तो मुख से निकलेगा गुस्सा तो बहुत आता है सुन करके, परंतु वो कभी न कभी बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप ले लेगी, शोला बन जाएगा। फिर हम उसको कैसे बुझा पाएंगे। तो हम छोटे को ही खत्म कर दें। और उस खत्म करने का एक ही लक्ष्य है जो बाप दादा ने हमको श्रीमत दी है कि ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो और ना व्यर्थ देखो, ना करो ना सोचो। कभी कभी हम क्या कहते हैं, मेरा भाव थोड़ी था, मैंने तो हंसी में कहा था, मैंने तो हंसी में कहा, मेरा कोई भाव भी नहीं था, लेकिन अगले को तीर लग गई। तो ऐसा व्यर्थ भी ना बोले, इसलिए बाबा ने उसे सिखाया, बच्चे कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। ये बाप दादा ने हम बच्चों को शिक्षा दी। तो हमारा जो परम शिक्षक है, उस परम शिक्षक की पढ़ाई, उसकी शिक्षाएं अपने जीवन में रखेंगे तो हम इन बातों से मुक्त हो जाएंगे। तो हमारी कौन सी स्थिति होगी? कर्मातीत स्थिति होगी और इन बंधनों से मुक्त स्वतंत्र आत्मा होंगे। तो हम जो चाहें उतना ही संकल्प करेंगे, शक्तिशाली संकल्प करेंगे, जो करेंगे वो सफल होगा। और अगर हमारे सोचने में, हमारे बोलने में, हमारे करने में सफलता नहीं आती है तो क्या समझे? व्यर्थ गया, सफल नहीं हुआ। और यदि हमें सफलता मिलती जा रही है, मन की खुशी ताजी है, मन हमारा शक्तिशाली है, हमारी अवस्था बहुत श्रेष्ठ है, कैसी भी वायुमंडल वातावरण हो, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन हमारी अवस्था में हलचल ना हो, जिसको बाबा ने कहा बच्चे अचल अडोल और निर्भय रहो। आज हम देखते हैं खीरा ने, वो जंगल में घास खा रहा होता है, लेकिन अगर शेर ने दहाड़ा तो उसकी आवाज सुन के वो चारों तरफ देखता है, और जब उसकी नजर शेर पे पड़ती तो वो भागता है जान बचा के, और शेर भी उसके पीछे पड़ता है। बहुत भयावह वाली स्थिति है, लेकिन वो कहीं झाड़ियों में छिप जाता है, फिर शेर को नजर नहीं आता तो शेर वापस चला जाता है। थोड़ी देर में फिर वो देखता है कि शेर तो चला गया, और उसके जाने के बाद क्या करता हिरन? झाड़ियों से निकल आया और घास खाना शुरू कर दिया। अब उसकी स्थिति डर वाली है, हलचल वाली है, है निर्भय। तो एक जानवर के अंदर भी निर्भयता का गुण है। जितनी देर भय की स्थिति थी उतनी देर थी, और हम तो सर्वशक्तिवान बाप की छत्रछाया में है। बाबा कहते बच्चे निश्चिंत रहो, मैं बैठा हूं। तो बाप की छत्रछाया में हम बराबर रह रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते हमें ये स्मृति रहे। तो शेर जैसी भी परिस्थिति आ जाए, जैसे हिरन के साथ हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमारी अवस्था कैसी हो, मानसिक स्थिति बिल्कुल भय नहीं, निर्भय, जिसको कहते ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण, मान अपमान, सुख और दुख, हानि और लाभ, निंदा स्तुति एक समान। अब एक समान कहते तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल कैसे हो? तो बाबा ने कहा तुम फूल हो। कभी कभी बाबा को फूल देते थे और बाबा जहां भी जाते थे फूल स्वीकार नहीं करते थे। कहते बच्चे ये फूल देना तो बहुत सहज है, मुझे तो चैतन्य फूल चाहिए। आप बच्चे चैतन्य फूल बनो, बाबा को ये फूल चाहिए। और उसमें भी बाबा नंबर वन फूल किसको कहते हैं? रूहे गुलाब। गुलाब कांटों में भी है और खिला हुआ भी है और खुशबूदार भी है। दूसरा बाबा कहते कमल समान बनो। और तीसरा फूल सूरजमुखी बन जाओ। जो सूरजमुखी फूल है सुबह से शाम तक किसकी तरफ देखता है? उसका सारा संसार कहाँ है? उसी सूर्य के अंदर उसका संसार है। तो बाबा कहते बच्चे तुम भी सूरजमुखी फूल बनो, गुलाब के फूल बनो, कमल के फूल बनो और सूरजमुखी फूल बनो। तो आपका संसार, आपकी छत्र छाया ज्ञान सूर्य बाप है। तो जब बाप की छत्र छाया में होंगे हमारा संसार दूसरा होगा ही नहीं। तो विचार करो किसी की बातों का प्रभाव नहीं आएगा। और जो अंतिम पाठ बाबा पढ़ाते बच्चे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मोह भी कम नहीं है, सूक्ष्म रगे भी खींचती हैं। तो ऐसा ना हो कि सारी पढ़ाई करने के बाद त्याग तपस्या सेवा धारणा तो किया लेकिन अंत में कहीं सूक्ष्म रग वो हमको खींच के ले आए, हमें उड़ान नहीं भरने दे। तो इस पर एक मिसाल देते हैं कहानी के रूप में। एक मियाँ जी का परिवार बहुत गरीब था, बिल्कुल मना बेगर, इतना कि पहनने के लिए वस्त्र नहीं और खाने के लिए अन्न नहीं, लेकिन वो इबादत करने में बड़े नियम संयम से, बाल बच्चों सहित भी भाई खुदा को याद करो। तो परमात्मा ने भी खुश होके कहा कि इसको तो बंदे को जन्नत में ले आओ और फरिश्ते को भेजा। फरिश्ते ने आकर के बोला कि आपको खुदा ने निमंत्रण दिया है, आप जन्नत में चलो। तो बोले जन्नत में क्या क्या मिलेगा? तो सतयुग का पूरा वर्णन कर दिया कि वहां खाने के लिए 56 प्रकार का होगा, पहनने के लिए केम खाप जरी के वस्त्र होंगे, पीने के लिए अमृत का प्याला होगा, चलने के लिए मखमल होगा, सब कुछ बता दिया वहां क्या क्या होगा। तो खुशी से तैयारी कर ली। मियाँ जी का पैर बीबी ने पकड़ा, नंबर वार बच्चों ने, बच्चे भी बहुत होते उनों के, पूरी चेन बन गई और फरिश्ते ने उनको आशीर्वाद दिया उड़ो। उड़ गए, बड़ी खुशी से जन्नत जा रहे थे। लेकिन जब छठे आसमान में पहुंचे तो उनकी बेगम को क्या याद आया? रोज सवेरे वो स्नान के बाद बच्चों को कपड़े सिल सिल के पहनाती थी। तो उन्होंने कहा कि सुनो ऐसा है, उस फरिश्ते ने तो ये तो कहा ही नहीं कि वहां सुई मिलेगी, अगर बच्चों के वस्त्र फट गए तो हम सिलेंगे कैसे? और उसने कहा यहां से कुछ उठाओ नहीं। तो सब तो छोड़ दिया, तो ऐसा करें कि सुई तो ले ले। तो वो कहे अम्मी जान हम जाएं, वो कहे अम्मी जान हम जाएं, वो कहे अब्बा जान हम जाएं, हम ले आए दौड़ के जैसे बच्चे होते चुलबुले। तो अब्बा जान ने कहा ऐसा है, तुम सब तो देर लगाओगे, मैं दौड़ के ले आता हूँ, कहाँ सुई रखी है। अब आप विचार करो कि जब छठे आसमान से छलांग लगाई होगी नीचे, तो चेन तो बनी है, कहाँ गए सब, कहाँ पहुंचे। तो बाबा भी कहते बच्चे जहाँ लगाव होगा तो वो हमको अंत मते, इसलिए अभी से हम देखना शुरू करें हमारा कहीं लगाव तो नहीं है। अपने तन से लगाओ, परिवार से लगाओ, और किसी वस्तु से, किसी वैभव से, किसी व्यक्ति से, तो अंत में वो लगाव हमको कहाँ लाएगा। तो लगाव से हम किनारा करते चले, नष्टो मोहा बनते चले, और अपने आप को चेक करते चले कि हमारा किसी में कहीं कोई सूक्ष्म रग तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जो है अंत में वो हमें याद आए, तो मियाँ जी जैसी स्थिति ना हो कि सब कुछ प्राप्ति होने के बाद और हम कहाँ आ जाएं, नीचे आ जाएं। तो जब हम लगाव से किनारा करते चलेंगे धीरे धीरे, तो हम व्यर्थ से भी बचते चलेंगे, और संग का भी हमारे ऊपर बहुत असर होता है, वो हमसे व्यर्थ करा ही लेता है। दादी जानकी कहती सोए हुए व्यक्ति का भी संग लगता है। मैंने कहा दादी सोए हुए का कैसे संग लगेगा, कारे बहुत बड़ा संग लगता है, तुमको पता है। मैंने कहा नहीं, तभी तो पूछ रही हूँ। दादी ने कहा कि मान लो एक कमरे में चार लोग सोए हैं, मधुबन में आने के बाद भी आठ लोग सोए हैं, आठ की भी खटिया का कमरा होता है, छह का भी होता है। अमृत वेले गीत बजता है मेरे लाडले जागो, तो एक मनुष्यात्माओं की ह्यूमन नेचर है, आंख खुलते देखेंगे कितने लोग उठे हैं। तो देखा अभी तो कोई उठा ही नहीं है, फिर कहेंगे कि कितने लोगों से बाथरूम भी कम होगा, तो हम सबसे बाद में उठेंगे जब बाथरूम खाली मिलेगा। पहले सात उठ जाएं, तब तक तो आंख बंद कर लिया। दादी ने कहा वो कब आंख खुलेगी, जब पौने पांच बजेगा। तो संग का रंग लगता है, ये हमारे समय को व्यर्थ कर दिया, जो हम योग की कमाई करते उसको व्यर्थ कर दिया, और जो पावरफुल अमृत वेला होना चाहिए, हमारे सारे दिन की नींव है, वो तो कमजोर हो गई, तो सारा ही हमारा व्यर्थ चला गया, पूरा दिन पूरी दिनचर्या व्यर्थ चली गई। अब व्यर्थ का कारण संग भी होता है, तो अब हम संग भी किसका करें, उन्नति वाले का करें, श्रेष्ठ संग करें, और सबसे बड़ा संग तो बाप दादा का है। और आप लोग इतने लकी हैं कि आप इस समय पांडव भवन में ऐसी जगह बैठे हैं, और आप सबकी भट्टी चल रही है, ये स्थान जहाँ कण कण में सारी बाप दादा की यादें, मम्मा की यादें, माँ रती दीदी दादियों की यादें, सब कुछ समाई है, शक्ति समाई है। ये भूमि वरदान भूमि है, जो चाहे हमको वरदान बाप दादा से मिलेगा। अगर एक संकल्प कर लिया मुझे परिवर्तन होना है, हम इस वरदान भूमि में परिवर्तन भूमि में आए हैं, तो परिवर्तन होके ही जाना है और उसको जीवन में कायम रखना है। तो ये परिवर्तन भूमि, वरदान भूमि, और जो प्राप्ति करना चाहें, जिस कमी को निकालना चाहें, बाबा उतनी शक्ति हमको भर देगा। तो ये पांडव भवन, जहां साकार में बाबा ने तपस्या किया और जहां से सारे विश्व के अंदर ज्ञान गंगाओं की धारा बह रही है, जहां जाने से ही जब यहां की धाराओं से लोग पति से पावन बनते, आत्मा शुद्ध बन जाती है, तो इस भूमि में आकर के बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनमें से आप सबको ये मौका मिला है। समझते हैं अपने को भाग्यशाली, कितने बाबा के लाखों बच्चे हैं, लेकिन यहां तपस्या करने का मौका किनको मिल रहा है? गिने चुने लोगों को। वरदान भूमि में किसको मिल रहा मौका? आप कितने भाग्यशाली हैं, इसलिए चार धाम की यात्रा भी पांडव भवन में है, ज्ञान सरोवर शांति वन में नहीं है। तो जब हम इस जगह पर पहुंचे हैं तो सब कुछ दे दे की दुनिया, और देखिए जो भी कारोबार है वो तो अपने आप किनारे हो जाती है। तो कभी हमारे मनसा में उल्टे ख्याल तो आएंगे नहीं, हम जो चाहे सफल कर ले, अपना सब कुछ सफल कर ले। और सफल करने में बहुत फायदे हैं, परंतु बाबा पे पूरा निश्चय, पर कभी कभी निश्चय हमारा डगमगा जाता है। कब? हम कहते तो है बाबा हमें पूरा निश्चय है, हाथ भी उठाएंगे निश्चय है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आ जाती है तब। कहते ना, एक पर्वतारोही था और उसका किसी कारण से फिसल गया तो नीचे आया। अब अंधकार है, बादल छाए हुए हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, वो भगवान को पुकारता है कि मुझे बचा लो, तो उसको आकाशवाणी होती है, तुम्हें निश्चय है भगवान पे? बोला हाँ। एक बार, दो बार, तीन बार, तीनों बार बोला मैं पूर्ण निश्चय है परमात्मा पे। तो अगर निश्चय है तो ये बेल्ट खोल दो। अब सोचने लगा, ये भगवान के वाक्य थे किसी और के थे आकाशवाणी? अगर हम खोल देंगे तो पता नहीं कितने हजार फीट नीचे खाई में चले जाएंगे। नहीं खोला, फिर दहशत में लटक के क्या हुआ? प्राण चले गए और धरती से 1.5 फुट ऊपर था। लास्ट में भी संशय आ जाता है। तो कभी भी हमारे अंदर संशय ना आए ये पक्का रखना, ना हमारे में, ना अपने में, ना बाप में, ना परिवार में। तो क्या होगा? कभी भी हमारे से व्यर्थ नहीं होगा। भगवान पे निश्चय पक्का, हम तो भगवान ही कहेंगे क्योंकि भगवान हमारा बाप है, हमारा बाप भगवान है। तो पूरा पूरा निश्चय। एक भिखारी था, दिन भर भीख मांगता था। उसको किसी भगवान के भक्त ने कहा, तुम कटोरा लेके भीख मांगते हो, लेकिन तुम भगवान को याद करो तो एक दिन परमात्मा प्रकट होंगे और वो बोलेंगे कि जो वरदान चाहिए मांग लो। तो रोज सोचता था आज परमात्मा मिल जाएंगे तो ये मांगेंगे, रोज नई योजना बनाता था। लेकिन जब परमात्मा उसके सामने प्रकट हुए तो ये तो कहा ही नहीं, वरदान मांग लो। उससे पूछा कि तुम्हारी झोली में क्या है, बोले जो इतना मैंने भीख मांगा है वो चावल है। अच्छा तो ऐसा करो ये सारा चावल मुझे दे दो, अब अगर पूरा पूरा निश्चित था भगवान है तो दे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन वहां कौन याद आया, यदि मैं ये चावल भगवान को दूंगा मेरे बच्चे क्या खाएंगे। लेकिन ये भी निश्चय है कि भगवान है तो भगवान का कहना भी नहीं टालना है और बच्चों को भूखा भी नहीं रखना, वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली बच्चों की। तो एक चावल दे दिया और बड़े भारी मन से वापस आया। घरवाली ने पूछा तो सारी कहानी सुनाई, कहा भगवान ने तो कहा ही नहीं वरदान मांगो, मैं तो बहुत कुछ सोच के बैठा था। कहा कोई बात नहीं, हम लोगों की किस्मत में यही होगा। अच्छा लाओ जो चावल लाए हो बच्चों को बना के तो खिलाएं। जब वो चुनने लगी तो थाली में कहते एक दे दस पाए, वो दस चावल के बराबर सोने का चावल था। तो लेके आई, बोली ये क्या है। वो समझ गया कि मैंने एक चावल दिया था उसका दस गुना सोने का चावल है। अब वो पछता रहा है, अगर मैं सारा दे देता तो निश्चय होने के बाद भी कहीं कहीं बाबा कहते तुम बच्चे चिंता अपने ऊपर ले लेते हो, अपने ऊपर अपनी जिम्मेदारियां ले लेते हो। हम बाबा की फोटो रखेंगे, तस्वीर रखेंगे, बच्चे तुम चिंता मत करो, उसके बाद भी हम अपनी चिंता लेते हैं। चाहे हमारे शरीर की बीमारी हो, चाहे बच्चों की कोई दिक्कत आए, चाहे कोई और प्रॉब्लम आ जाए, हम बाबा पे भरोसा करके नहीं छोड़ते हैं। तो ये भी तो हम व्यर्थ का सोचते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में गीत गाते थे भजन कि चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम। अब बाबा ने हमको चिंतन करने की बहुत सारी बातें बताई है, एक एक बात का चिंतन करते रहे तो और कुछ सोचने का मौका ही नहीं है। जैसा कि शुरू में बताया, हमारे अपने ही परिचय में छह बातें हैं, एक एक बात का चिंतन करते रहे तो बचेगा व्यर्थ के लिए। तो एक एक बात को सोचते रहे जो बाबा ने पढ़ाया, जो बाबा हमसे आश रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, हमें वो पूरा करना है, तो कभी भी हम इधर उधर की बातों में नहीं आएंगे, ना देखेंगे, ना सोचेंगे, ना बोलेंगे, ना करेंगे। तो आज से ये प्रतिज्ञा करिएगा, आपके पास चारों धाम है और जितना दिन अभी यहाँ पर हैं, तो जो बाबा का वरदान झोली में भरिए, उसको साथ ले जाइए और निभाइए, तो बहुत जल्दी क्या बन जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त और समर्थ बन जाएंगे। तो सर्व समर्थ हमारे साथ है और हम औरों को भी समर्थ बनाएंगे, खुद भी बनेंगे औरों को भी बनाएंगे। तो आज से तो नहीं कहेंगे कि क्या करें व्यर्थ आ जाता है, हमने दरवाजे ही खोल रखा तो क्यों नहीं आएगा, और अगर खोल रखा है तो आज थोड़ा व्यर्थ है कल बड़ा आएगा, आज छोटी प्रॉब्लम है कल बड़ी आएगी। कहते एक के घर में चूहा आता था, तो उसको पिंजड़े में डाल के आया। जब दोबारा आया तो बिल्ली बैठी दूध पी रही थी। बिल्ली को बोरे में बंद किया, दूर छोड़ के आया तो कुत्ता खाना खा रहा था। उसको भगा के आया तो गाय अंदर घुसी और कुछ खा रही है। कारण, हम उसने दरवाजा नहीं बंद किया। तो दो मेरी खिड़कियां हैं व्यर्थ के लिए, एक आंख एक कान। बस ये दो खिड़की अगर हम व्यर्थ की तरफ से बंद रखें तो कभी भी मनसा में व्यर्थ विचार नहीं आएंगे, हमारा मन शक्तिशाली होगा, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहेगा। फिर मन भी कंट्रोल में होगा, मन सुमन बन जाएगा। इसलिए दो खिड़कियों को बंद रखना। अभी जब हम निकले तो आंधी आ रही थी, तो क्या करेंगे, कांच को बंद करेंगे ना, नहीं तो सारी धूल मट्टी कहाँ जाती, गाड़ी के अंदर आएगी, रूम खुला होगा रूम में आएगी। तो ये जो बाहर की आंधी है, इससे हमें दो खिड़कियां जरूर बंद रखनी है। दुनिया की दुकान तो बंद होती हफ्ते में एक दिन, और हमें अपने भी दुकान को बंद रखना है। तो कभी भी व्यर्थ में नहीं जाएंगे। हमें जो सुनाई देगा, जो दिखाई देगा, समर्थ बातें दिखेंगी। इसलिए दत्तात्रेय की तरह क्या बनना है, यहाँ पर मंदिर है दत्तात्रेय जी का, कि उन्होंने 24 गुरु किए और एक एक से गुण लिया। और बाबा ने भी कहा तुम गुण रूपी मोती इकट्ठा करो तो चुन चुन के माला बन जाएगी। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को हंस बुद्धि बनाया है। देखो तो मम्मा का सीजन चल रहा है, मास चल रहा है, मम्मा बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती थी कि हमेशा गुण रूपी मोती चुगना है, हंस बनना है, होली हंस बनना है। तो बाबा ने भी हम बच्चों को कहा मोती चुगो, अवगुण का कंकड़ छोड़ दो। तो हम भी मोती चुगे, एक एक के गुण चुगे। दत्तात्रेय ने तो 24 गुरु किए, लेकिन यहाँ बाबा कहते बच्चे तुम्हारा एक सतगुरु है, सब गुरुओं का गुरु, तो तुम्हें क्या बना रहा है, बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरा बना रहा है, तो हीरा बन जाएंगे। बाकी तो आप सभी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी दीदियों के द्वारा पालना ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, और बहुत पहले से भी भरपूर होके आए हैं। पर यहाँ से जरूर पक्का पक के जाना, संकल्प करके, जो संकल्प करेंगे वरदान भूमि का वो निश्चित पूरा होगा, अनुभव करिएगा। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद विद्याबेन जी, बहुत सरल भाषा में, बहुत गुह्यता से, लेकिन आपने विषय को स्पष्ट किया है। समझ में आ गया सभी को व्यर्थ से कैसे मुक्त रहेंगे? समझ में आ गया तो हाथ हिलाइए। सभी को समझ में आ गया, पर अब रहना भी है। हाँ,
गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले, गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले, चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, तरल कर ले, गुजरते जा